आज का प्रातः क्लास है दस सात 1965 शनिवार। रिटायर चले हैं हमारे, तीरथ में आ रहे हैं, उनके बच्चों ने ये गीत सुना। इसका अर्थ भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने जाना और समझा, फिर भी बाबा अच्छी तरह से भी साथ से समझाते हैं। दुनिया भर में तो कोई नहीं जानते हैं कि हम आत्माओं को पढ़ाने वाला जो पतित पावन बात है उनकी महिमा बहुत है। तो तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया में कोई भी महिमा नहीं जानते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी कहने से कोई महिमा का पता नहीं है। बस यही कहते हैं सर्वव्यापी है, फिर गायन करते हैं पति तो पावन है, तो जरूरी एक होगा ना जो आकर के सभी पतितों को पावन करते हैं। इसलिए उनको हम सर्वव्यापी कह ही नहीं सकते हैं, जबकि एक तरफ में बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, ये इनकी बुद्धि में नहीं बैठता है कि भारत पावन था अभी पतित बना हुआ है। जो देवी देवता धर्म वाले थे वो अगर यहाँ होते तो जान लेते। तो देखो तुम तो देवता थे, तुम अभी जान लेते हो कि हम पावन दुनिया के मालिक थे, अभी पतित दुनिया में है और फिर अभी बाप पावन दुनिया का मालिक बनाए रहे। तो तुम ही जानते हो ना करके जो मालिक बनने वाले हैं वो ही फिर आए हुए हैं। बरोबर वो यात्रा तो चैतन्य है और उनकी फिर ये यात्रा भक्ति मार्ग में है। पूज्य देवता सुपुजारी फिर भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न वर्णों में आ जाती है। अभी बच्चों को ये पक्का मालूम हुआ कि हम ब्राह्मण सुदेवता बनने हैं और सीख रहे हैं और बाप सिखलाए रहे हैं। गाया भी जाता है इस समय में, क्योंकि बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। बरोबर देवी देवताओं का जिनका नाम भी बिल्कुल मशहूर है और कोई भी दूसरा नाम नहीं लेते हैं, बस नाम यही लेते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण श्री सीता श्री राम लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राम सीता चंद्रवंशी। और फिर उनको कहा जाता है डायनेस्टी, तो इनकी बड़ी डायनेस्टी थी। इतना बरस किसकी डायनेस्टी नहीं चलती है, कितना बरस चलती है 1250 वर्ष लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी और 1250 वर्ष राम सीता की डायनेस्टी। और रोटी तो जल्दी जल्दी बदल जाती है। जैसे देखो अंग्रेज लोग की अभी थोड़े ही समय है, तो भी थोड़ा समय है, क्योंकि पहले कोई बादशाह ही नहीं होती है। वो तो पहले थोड़े थोड़े आते रहते हैं, जब आधा समय पूरा हो तब इनकी रैयत बड़ी होगी। तब वो छाटेंगे और कोई राजा को बैठाएंगे, तो उनकी डायनेस्टी चलेगी। इसे एडवर्ड हेनरी क्यों कहते हैं, दूसरा फिर जॉर्ज। तो देखो फिर दी जाती है ना भाई, ये इनकी डायनेस्टी, ये जॉर्ज द फर्स्ट, हेनरी द फर्स्ट, एडवर्ड द फर्स्ट। देखो थोड़ा टाइम में ये बाबा बच्चों को थोड़ा विस्तार से समझाते हैं कि और धर्म की डायनेस्टी थोड़ा समय चलती है, ये एक हिस्सा जो 1200 वर्ष है, एक ही सूर्यवंशी डायनेस्टी बस, नाम भी वही चलता आता है, परफेक्ट ही नहीं, कोई गिनती नहीं होती है दूसरों की। 1250 वर्ष वैसे ही चंद्रवंश की बस, और कोई है किसी का नाम, कोई चित्र दिखलावे, कुछ भी नहीं। तो डायनेस्टी वालों का नाम रहता है भाई ये सूर्यवंशी डायनेस्टी, ये समझा जाता है कि बरोबर जन्म लेती होंगी। राजगद्दी के मालिक भिन्न नाम रूप देश काल होते होंगे जरूर, लंबी चौड़ी डायनेस्टी कहती है, चेंज नहीं होती। अब ये तो तुम्हें इस समय में बाप बैठ करके कर्म करना सिखलाते हैं, कौन सा कर्म सिखलाते हैं, अच्छा कर्म करना, ऐसा कर्म करना जिससे कोई को किसी प्रकार का दुख न हो। तुम बच्चे किसी को भी दुख नहीं देना, तुम सिर्फ एक को याद करना। तो अभी ये कर्म सिखलाते हैं, कर्म करना और याद करना, कहते हैं ना कर्म की गति न्यारी। अब ये सभी यहाँ पढ़ते हैं अच्छी तरह से, बहुत पढ़ते हैं, बहुत है जो घर में भी रहते हैं, तो ठीक है ना, घर में आए करके रहते भी हैं और घर में रहते हुए भी बारिश बन सकते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ आकर के बारिश बनना होता है। यहाँ आकर जो रहते हैं वो तो बरोबर जब तक गोद में हैं तब तक यहाँ के हैं, तब तक उनकी परवरिश यहाँ मम्मा बाबा से और बच्चों से होती रहती है। अभी उनकी भी कर्म की गति न्यारी है। और फिर जो बाकी बाहर में है, जो फिर आते भी जाएंगे, बाहर में भी रह करके अपना सब कुछ बाप का समझ करके ट्रस्टी बन जाते हैं और डायरेक्शन पर चलते हैं, वो भी जैसे बारिश हो गए, उनको थोड़ी डिफिकल्टी जरूर पड़ती है। वो तब तक पड़ती है जब तक कि मोह माया का ममत्व उनसे न टूट पड़े और निश्चय हो जाए कि बरोबर जिसका जिसने दिया था, जिसने जिसका लिया था, कहते थे हम सब कुछ उनको अर्पण में कर दिया। अभी हम जैसे कि जीते जी अपनी ही मिल्कियत के ट्रस्टी हैं, जीते जी अपनी मिल्कियत का कोई ट्रस्टी नहीं बनता है, वो तो मालिक है। जब मरने का होता है तब ट्रस्टी बना करके जाते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है कि बाप मरेगा तब ट्रस्टी बनावेगा, यहाँ तो हर एक जो सरेंडर करती है, बाबा कहते हैं तुम फिर अपने कुटुंब का ट्रस्टी हो करके रहो, क्योंकि तुमको भगवान ने दिया था। ऐसे ऐसे भक्ति मार्ग में कहते आते हो, 10/7/1965 की वाणी का दूसरा पेज, पूछने से ही फट कह देते हैं ईश्वर ने ही सब कुछ दिया। तो अभी बाप फिर क्या कहते हैं, अच्छा ईश्वर ने दिया ना, अभी वो भक्ति मार्ग वाले तो ईश्वर को जानते ही नहीं है, अभी तुम तो सन्मुख बैठे हो, जानते हो। अभी बाबा भी कहते हैं देह सहित जो भी तुम्हारा है, ये तुम कहते आते थे कि ईश्वर ने दिया हुआ है, और जब आएगा जब हम उनके हवाले करेंगे बांध जाएंगे। देखो अभी है ना बराबर, समझा कि अभी है निराकार ईश्वर, ईश्वर है कोई साकार नहीं है। जो उनको यहाँ साकार में बिल्डिंग वगैरह बनानी है या कोई जायदाद बनानी है, ये जायदाद सिर्फ देने वाला है, लेने वाला तो कुछ भी नहीं है। लेने वाले मनुष्य और मनुष्यों से लेते हैं। तो ये बाप लेने वाला नहीं है, ये देने वाला है। तो देखो ये बोलते हैं कि अच्छा ट्रस्टी बनो, फिर ट्रस्टी से पूछते रहना, भले कभी थोड़ी भूल चूक भी हो सकती है, क्योंकि उस ट्रस्टी पने में पक्का रहना ये जरा मुश्किल होता है, टाइम लग जाता है। वो बाप जानते हैं कि उसको टाइम लगेगा पूछने के लिए, वो ट्रस्टी पने का होने से वो भी वारिस बनते हैं। और यहाँ रहने वाले भी बाहर से बनते हैं, क्योंकि सब कुछ अर्पण करके बैठते हैं। तो देखो, तुम्हारा अर्पण किया हुआ तुम्हारा वहाँ ले नहीं जाते हैं, ऐसे भी कहेंगे। बाबा कहते हैं हाँ, जो तुम अर्पण करते हो मैं ले जाता हूँ और तुमको बैकुंठ में देता हूँ। जो शुरुआत में आए हैं वो जाकर के गद्दी का मालिक पिछाड़ी में बनेंगे। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी में, इसकी बात की है। ऋषि के भी आदि में गीता में जो घोड़ा गाड़ी दिखाई है उसकी चार घोड़ों की बात की थी। तो उनके लिए बोला जो एडवांस में भी पहले पहले आए, शुरुआत में आए हैं वो जाकर के गद्दी का मालिक पिछाड़ी में बनेंगे, चंद्रवंशी के भी पिछाड़ी में। तब तक क्या करेंगे? जो बड़े बनते हैं उनके आगे सर्विस करेंगे। इस बात में बड़े बनते हैं है? ज्ञान में बड़ा सो बड़ा घर, ज्ञान में बड़ा तो सर्विस में भी बड़ा। उसमें भी ऐसे हैं, पूछो तो मैं बता भी सकता हूँ। ऐसे हैं अभी भी जो कभी भी उन्नति को नहीं पाते हैं, ऐसे भी कर्म करते हैं जो जरा भी उन्नति को नहीं पाते हैं। कैसे कर्म करते हैं है? सुख देने का कर्म करते हैं या दुख देने का कर्म करते हैं? दुख देने का कर्म करते हैं। कौन जो बेसिक में एडवांस में आदि में आए थे, बाद में विरोधी बन गए, लास्ट तक दुर्विरोधी बनते हैं, जरा भी उन्नति को नहीं पाते हैं। बस ऐसे के ऐसे ही जामड़े ऊंच पद पाए ही नहीं सकते हैं। तो समझा जाता है कि शायद इन विचारों की तकदीर में वो ही पिछाड़ी में कुछ सर्विस करते करते फिर आकर के उनको राजाई मिल जाएगी। ऐसे भी है तो भी अगर रहेंगे तो, अगर निकल गए तो फिर उनका प्रजा में एकदम कम से कम पद। यहाँ फिर भी कुछ है, ये अच्छी नौकरी फिर थोड़ी उन्नति को नौकरी पाती रहेगी। पिछाड़ी में आकर के गद्दी पर बैठ जाती है और फिर जो कुछ भी उनके कर्म है वो डबल होते जाते हैं। देखो कर्म की गति कितनी गहन है। यहाँ रहते हुए फिर जो कुछ भी कर्म करते हैं वो भी कर्म फिर 100% जास्ती होते रहते हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि ईश्वर के दर के भी होते हुए भी फिर वो बेचारे बहुत कम पद पाते हैं और सजा भी बहुत खाते हैं। वो अज्ञानियों से भी जास्ती सजा खाते हैं। और सजा भी बहुत खाते हैं फिर पद भी बहुत मत नीच मिलता है, क्योंकि वहाँ राजधानी में नीच पद वाले भी तो चाहिए ना। राजा रानी के पास क्या नहीं होगा। अंदर सब कुछ तो जरूर होगा ना। समझाया भी जाता है कि कोई भी कर्म नहीं करो, नहीं तो वो मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, जास्ती होता जाएगा। गति देखो कैसी है मनुष्य की। जो बाप आकर के ऐसी कर्म गति बनाते हैं ठक से एकदम पहले से स्वर्ग की बात चाहिए, ठक जो सत्य श्रीमत पर न चल करके कर्म करते हैं, क्योंकि अभी तो ईश्वर आया हुआ है, श्रीमत पर कर्म करना चाहिए, करना है। तो वो आ श्रीमत पर और तुम श्रीमत पर, आ श्रीमत का भी तुम देखते हो, बाप उनको अच्छी तरह से जानते हैं, ये जो कर्म करते हैं वो कोई भी यहाँ रहते हुए भी कोई अच्छा किसको कह दे रहे। अच्छा शिव बाबा को याद करो, वर्षा मिलेगा, वो भी ताकत नहीं है, इतना भी नहीं कर सकते, समझा ना। तो सुन सुन करके लाचारी हालत में किसको कह दिया, पर अंदर की वो निश्चय बुद्धि और वो नशा तो नहीं रहता है ना। तो बाप बैठ करके कर्म की गति और भी कर्म की गति भी समझाते। तो दुनिया में भी देखो साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है अर्पण होने में, ये अक्षर भी लिखे हुए हैं। उनका तो हृदय विदीर्ण होता है और बेचारे कर भी नहीं सकते। इतनी कमाई लाखों करोड़ों की, देखो कितने न, फिर भगवान को उनकी दरकार है। तो वो तो कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, तो गरीबों को ही उठाऊंगा ना। साहूकारों की तो एकदम बहुत मिल्कियत होती है, मुझे तो गरीबों का ही चाहिए। तो जो भी स्थापना करनी है वो गरीबों की पाई पाई से करनी है, क्योंकि उनको वर्षा मिलना है, क्योंकि बोलते ही हैं गरीबी निवाज। मैं साहूकार निवाज नहीं हूँ। क्या कहा है? गरीब निवाज हूँ। यज्ञ के आदि में भी क्या हुआ है? कोई गरीब भी निकला, कोई साहूकार भी निकला। कौन गरीब था है? और कौन साहूकार था? दादा लेखराज कितने साहूकार थे, और उनका जो दुकान में दास दासी का काम करता था, मैनेजर था, वो कितना गरीब, बहुत छोटी सी दुकान। बाद में उनका मैनेजर बना। ये भी गरीबों को दान दिया जाता है, मदद दी जाती है गरीबों को। ये बात तो आए हुए है जैसे कि गरीबों को वर्षा देने, और गरीब तो अक्सर करके माताएं हैं। माताओं के हाथ में बिल्कुल कुछ नहीं रहता है। कोई होंगी जो मर गया होगा और दूसरा कोई नहीं होगा, तो भी उनको लूटपाट करके खत्म हजम कर देती है। अब वो बेचारी कहाँ जावे, बाहर में जाकर के कहाँ मत्था मारे कि हमारी सारी जमीन जायदाद लूट ली। तो देखो आज माताओं का ये बुरा हाल है। 10/7/1965 की वाणी का तीसरा पेज। बहुत है जो माताओं को घर का खर्च भी नहीं देते हैं। बिचारी आप ही संभालेंगी। बहुत रिवाज है बहुत देशों में। अभी माताएं तो गरीब ही ठहरी, तो हाफ पार्टनर तो है ही नहीं। हाफ पार्टनर अगर होते तो बिल करते, तो पहले हाफ सब इनका निकालते, परंतु नहीं, वो एकदम कुछ भी नहीं निकालते हैं। ऐसे भी मर जावे तो देखो बकवास बन जाता है कि ये बारिश है ही नहीं। भले आजकल गवर्नमेंट ने कई कायदे निकाले हैं, परंतु तो भी माताएं इन बातों से नहीं जानती हैं ये कायदे कानून क्या होते हैं। हम किस किस से लड़े, इससे लड़े, फलाने से लड़े, और वो तो झट लड़ पड़ते हैं। भाई भाई भी आपस में कम जास्ती मिले तो एक दो को मार भी डालते हैं। तो बाप कहते हैं देखो मैं तो हूँ ही गरीब निवाज। एक तो तुम जानते हो कि ये भारत बिल्कुल ही गरीब है। सभी धर्म खंडों से गरीब, इस भारत में कोई कितने साहूकार हैं, कोई कितने गरीब हैं। उन गरीबों में भी माताएं सबसे गरीब हैं, और माताओं में भी कन्याएं सबसे गरीब हैं। उनको तो कुछ पहनना भी नहीं है, माताओं को तो जेवर आदि भी मिल जाते हैं। अन्याय तो पहने तब जब ससुर घर जाएं, पियर घर में तो उनको श्रृंगार नहीं होता है। भले कोई बहुत साहूकार है, पहनने के लिए कुछ दे देते हैं, परंतु ला तो ऐसा है ना कि इनको जा करके अपने ससुर घर जबकि विकार का सौदा हो गए तब इनको देवे। इनको कन्याओं को आजकल देखते हो कि अगर विकार के सौदे में विकार न देवे तो फिर वो सब छीन करके रवाना कर देते हैं। आज यहाँ ऐसा भी केस सामने आ गया बाबा के, तुम आइयो, तुमको हमने जेवर दिया ही था इसलिए, क्योंकि तुम विकार देती हो इसलिए दिया था। अब विकार नहीं देती हो तो सारा जेवर वेवर यहाँ रखो, सब कुछ जब्त करके रख लेते हैं, समझा? क्या समझा है? सबसे जास्ती गरीब कौन? कन्याएं माताएं। तो जैसे कोई कोई कन्याओं का कितना डिसरिगार्ड हो जाता है, कोई कोई कन्याओं का तो बिकना हो जाता है। पैसा भी देना और कन्या भी देना, तो जैसे कि हम उनको कसाई के हाथ में बेच देते हैं। कन्या गैया होती है ना, तो कसाई के हाथ में बिक जाती है। परंतु वो भी बिक जाती है तो जो दूध नहीं देती है वो बिक जाती है। क्या हुआ? दूध सुखरूपी दूध नहीं देती है भिखारी सुख का, तो बेच देते हैं। दूध वाली नहीं बिकती है। अभी दूध की तो बात ही नहीं है, ये तो आजकल बच्चों को समझाया है। इस समय में कन्याओं को कंस के हाथ में नहीं देते हैं, इसका भी एक नाटक बना हुआ है कि कैसे कंस बैठ करके पत्थर से पटकाते हैं। वो तो दिखलाया है कि वो बैठ करके पत्थर से पटकाते हैं, फिर बच्चे को भी पत्थर से पटकाए देते हैं। ये तो है ना बरोबर। बाप है, बच्चे को भी शादी करा दी, जैसे उनको पत्थर से पटकाई दिया, बच्ची की भी शादी करा दी जैसे पटक दिया। ये एक नाटक बनाई दिया है, परंतु बाप तो बैठ करके अच्छी तरह से समझाते हैं ये भी जानते हो कि बरोबर विकार के लिए जाते हैं, क्योंकि ये है ही विशेष वर्ल्ड, विकारी वर्ल्ड है। इनको ये भूल गया है कि निर्विकारी दुनिया भी थी, जिसको वॉइस लेस वर्ल्ड कहा जाता है, वो भी ये भारत था जिनके चित्र बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण को कभी कोई भी सीएस नहीं कहेंगे, कहते ही संपूर्ण निर्विकारी। जब कोई बैठते हैं संपूर्ण निर्विकारी, तो पूजा करने वाले जानते कि मैं विकारी हूँ। ये फिर विकारी किसके आगे बैठेंगे? ऐसे हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठते हैं। ये लक्ष्मी नारायण ऐसे बैठेंगे नहीं? तो देखो भारत में ही है ना बरोबर, परंतु फिर ये किसको मालूम नहीं है? यही खुद जो निर्विकारी है वो ही खुद फिर विकार में आते रहते, समझा? मनुष्य भक्त लोग हैं, ये समझते हैं ये तो हाजिर हुजूर है, ये भगवान है, भगवती है। भगवान कोई मरता थोड़ी है, भगवान कोई पुनर्जन्म थोड़े ही लेते हैं। परंतु तुम बच्चों को अभी ज्ञान की रोशनी मिली है, ये है भारत के सबसे ऊंच, जिन्हें स्वर्ग का मालिक कहा जाता है। ऐसे मत समझो कि राधे राम सीता कोई स्वर्ग का मालिक कहेंगे, नहीं। ये भी तुमको अब ज्ञान की रोशनी मिली है, कि बरोबर स्वर्ग का नाम है ही श्री लक्ष्मी नारायण। विष्णु भी पीछे, फिर वो फिर स्वर्ग से दो कला गिरते हैं, कौन है? विष्णु बनते हैं ना, तो दो लक्ष्मियां उनके संस्कार मिल जाते हैं, संगमयुगी नारायण और सतयुगी नारायण, उन दोनों के संस्कारों का मेल होता है, तो चारों का मिल करके विष्णु बनते हैं। तो विष्णु सतयुग और संगम दोनों के हैं ना, और सतयुग से तो फिर नूतनती कला हो जाती है, तो उनको थोड़े ही स्वर्ग का मालिक कहेंगे। जो दो कलाएं त्रेता में कम कर देती है, सतयुग के मालिक थोड़े ही कहेंगे। तो गिरते हैं, कौन गिरते हैं? वो ही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में आते हैं, क्योंकि वर्णों में तो जरूर आना होता है। देखो समझाने डिटेल में बहुत अच्छी समझाते हैं, कर्मों की गति भी देखो कि बाप आकर के बहुत अच्छे कर्म करने की सीमत देते, श्रेष्ठ मत देते हैं, न चलने के कारण देखो फर्क कितना पड़ जाता है। स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट्स, गॉड फादर के बच्चे, मेरे बच्चे ही हैं। हाँ, सदगति दाता सदगुरु भी सबका एक ही है, परंतु सदगति में फर्क देखो कितना हो जाता है। फर्क देखो कितने दर्जे का पड़ता है। एक बहुत ढेर के ढेर स्टूडेंट्स हैं ना, तो देखने से ही झट मालूम पड़ जाता है। इतने तो कोई यहाँ कोई कहाँ कहाँ करते हैं, परंतु सबको यही समझाया जाता है क्या कि कहाँ भी रहो, जबकि सदगति होती है तो दुर्गति करने का, दुर्गति होने का कोई कर्तव्य नहीं करना चाहिए। दस सात पैंसठ की वाणी का चौथा पेज। और दुर्गति कौन सी होती है? एक तो पहले में पहला नंबर देह विमान छोड़ना है, क्योंकि वो है नंबर वन। उसके बाद देह अभिमान में आते ही फिर ये काम क्रोध लोभ आदि ये सभी विकार सताते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाते भी बहुत हैं अच्छी तरह से कि बच्चे अभी तुम आत्मा हो ना, जानते हो ना कि तुम्हारा शरीर बहुत पुराना होता है। बच्चों को समझाते हैं, दूसरों को नहीं समझाएंगे। दूसरे कौन और बच्चे कौन हैं? बच्चे माना सूर्यवंशी बच्चों को समझाते हैं, चंद्रवंशी बनने वाले हैं उनको भी समझाते हैं, दूसरों को नहीं समझाएंगे। दूसरे कौन? और जो धर्म में चले जाते हैं या और धर्म के जो पक्के होते हैं उनको नहीं समझाते, क्योंकि यहाँ तो बच्चों का ही सैंपलिंग लगेगा ना। आएगा और समझेगा, दूसरा सैंपलिंग लगना ही नहीं, वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि ढेर हैं, कितने करोड़ों हैं, बात मत पूछो। तो यहाँ के होंगे, सैंपलिंग लगने वाले हैं। आजकल झाड़ों का सैंपलिंग बहुत लगाते हैं ना, ये जो बड़ा का झाड़ है ना, बनियन ट्री, देखो उनका भी कितना सैंपलिंग लगा। अरे यहाँ बाप क्या लगाते हैं और वो क्या लगाते हैं? बनियन ट्री का तो उनको पता ही नहीं है, वो समझते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े झाड़ हैं। वही तो इनका दृष्टांत दिया जाता है, सबसे बड़ा बड़ा झाड़। उनकी यही हालत होती है कि फाउंडेशन खत्म हो जाता है तो भी बड़ा सरसब्ज रहता है, वो कभी भी सूखता नहीं है। उनको पानी मिलता ही रहता है, उनका सैंपलिंग लगाते रहते हैं, क्योंकि वो तो आकर के बरोबर पुराने हुए हैं, तो ये नए सैंपलिंग लगाते हैं। अब ये बाप भी बैठ करके नया सैंपलिंग लगाए रहे, तो देखो ये ह्यूमन का सैंपलिंग कैसा लगता है, वो तो झाड़ों का सैंपलिंग लगाते हैं। ऐसा सैंपलिंग लगाते हैं कि कोई कैसे, कोई कहां से आते हैं, कोई कहां से आते हैं, कहां से आते हैं है? कोई इस्लाम वंश से आए, कोई बौद्धी वंश से आए, कोई क्रिश्चियन वंश से आए, कोई कहां कहां किस किस धर्म से आते हैं। बाप की सैंपलिंग में आते हैं ना, तो बाप उनका सैंपलिंग लगाते हैं, और वो तो झाड़ के झाड़ है, वो तो बहुत सहज है एकदम, उनका तो बीज है। यहाँ देखो ये सात धर्मों में से आते हैं, एक एक ऊपर के निकलते जाते हैं और उनको बैठ करके ये अच्छा कर्म सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे कर्म करो। उसमें भी सबसे अच्छा कर्म कौन सा है, हैं? सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? अरे एक तो बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो, दूसरा कभी भी विकार में नहीं जाना है, किस कार में नहीं जाना है, भी मने विपरीत श्रीमत के वर खिलाफ जो कर्म है उस कर्म में नहीं जाना है। श्रीमत क्या कहती है? सुख देना है और सुख लेना है, किसी को दुख नहीं देना है और दुख लेना भी नहीं है। देखो जांच करते रहो कि मैंने इनको कोई क्रोध तो नहीं किया, मेरा कोई इस चीज में लोभ तो नहीं है, किसी में लोभ जाकर पड़ा हुआ है जो मुझे सताता है। तो ये सब अपनी अपनी जांच करनी होती है, क्योंकि लोभ किस में रखे सभी ईश्वर का है, तो हम उसमें लोभ क्यों रखें? हमें तो बाबा जो कहते हैं सो हम करते हैं, अभी रोज रोज तो नहीं कहते हैं ना, तो वो बोलते हैं अच्छा यदा कदा विकर्म हो जाता है पोता मेल दे दो। देखो कोई बेकायदे काम तो नहीं करते हैं, बेकायदे क्या होता है, समाज के कायदे बने हुए हैं ना, सरकार का कायदा बना हुआ होता है ना, सरकारी कायदे कानून भी तो होते हैं, तो न कायदे कानूनों के बरखिलाफ तो कोई काम नहीं करते हैं। जैसे कोई चोरी चकारी करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, डकैती डालते हैं, तो ये सरकारी कायदा कानून है, ऐसा करो है नहीं? अच्छा, कभी पोता मिल देखते हैं, ये देखते हैं कि ये तो बहुत गरीब है, ये बेचारा दे भी नहीं सकता है, तो भी कुछ न कुछ कर करके 15-20 रुपए दे देते हैं और उनको तंगी बहुत रहती है। देखो बच्चे, बच्चे हो ना, ऐसे हो ना। अच्छा, बाबा डायरेक्शन देते हैं कि 15 नहीं दो, 5 दो, 10 बैंक में जमा करो, तो वो तुमको 10 बैंक में जमा किया हुआ कभी काम में आ जाएगा। हारी बीमारी में काम आ जाता है ना, तो देखो सीमत देना, नहीं तो फिर उनको तंगी हो जाती है बेचारों को। उनको बहुत शौक होता है कि हम भी कुछ दे दे, हम सब कुछ दे दे, दे। ये भी दे दे, वो भी दे दे, कोई को तो भगवान से लव बहुत जोर से होता है, पेट को पट्टी बांध करके भी मैं अपना वहां के लिए जमा करूं। वो जानते हैं अच्छी तरह से कि शिव बाबा, अभी उन्हीं की बात हुई ना, शिव बाबा फिर हमको, शिव बाबा क्या करते हैं, जो शिव बाबा को देते हैं, शिव बाबा इन द्वारा तुम्हारे रहने आदि का प्रबंध कराते हैं। और तो कुछ भी नहीं है, ये जो बाबा का एक अकेला बच्चा है ना, उनके लिए बोलते हैं कि ये भी क्यों इकट्ठा करेगा। जब किसी ने सब कुछ जो इनके पास था वो सब कुछ दे दिया, ये अपना फिर भविष्य का बच्चा ले गए, बच्चे भी ले गए, क्योंकि दोनों प्रवृत्ति मार्ग है। अभी तुम जानते हो कि हमारा देवी देवताओं का गृहस्थ धर्म पवित्र था, अभी जो हमारा गृहस्थ धर्म है, इससे पहले जो था हम पतित बन गए थे, अभी तो आकर के सुधरे हैं। अब फिर बाबा आकर के उसी पावन गृहस्थ धर्म को फिर पावन बनाते, तो 84 जन्म जो चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाकर पूरा हुआ फिर उनको अवसर जरूर मिलना है ब्राह्मणानुसार। तो बाबा आकर के फिर समझाते हैं कि ये भी तो जैसे ट्रस्टी हो गया ना, कौन कौन ट्रस्टी हो गया, अरे बाबा ने जिसे मैं प्रवेश किया वो भी तो ट्रस्टी हो गया ना, इसलिए तो माताओं को ट्रस्टी बनाई दिया। कि अच्छा भाई तुम ही संभालो, मैं ट्रस्टी हो करके और ये सर्विस में लग जाता हूँ। तो मोहम्मद तो मिट गया, जो बाप ने साक्षात्कार कराई दिया कि तुम तो विश्व के मालिक बनने वाले हो, इसको साक्षात्कार कराई दिया हैं? अरे हैं? ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया दिया कि तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। ब्रह्मा की सोल विश्व का मालिक बनेगी या सतयुग का मालिक बनेगी? तो यहाँ किसकी बात है? हैं? हाँ, प्रजापिता की बात है, मुकर्रर रथ की बात है। तो साक्षात्कार उनको कहाँ कराया है? रामबाप को साक्षात्कार कराया था? नहीं, ब्रह्मा को बंदाकों का साक्षात्कार कराया, क्योंकि भक्त आत्मा थी, भावना वाली थी, और राम वाली आत्मा को बुद्धि का साक्षात्कार कराते हैं, ज्ञान से साक्षात्कार कराते हैं। लड़ाई भी दिखलाई थी। बाप कहते हैं अभी तुम भी तो बच्चे हो ना, अभी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बरोबर लड़ाई का बिल्कुल तूफान नजदीक आता जाता रहता है। ये समझते हो कि नाम ही है मूसलों की लड़ाई। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, किसी ने कहा मिसाइल्स की लड़ाई। मिसाइल्स और मूसल, इनमें फर्क क्या रहा? तो बरोबर तुम जानते हो ये मूसल यादवों के पेट से निकले हैं। और बहुत आकर के इन बातों को जानेंगे, बहुत ये जानते हैं कि विनाश है, पर ये क्या है, कौन है इनके पिछाड़ी में? इस विनाश के पिछाड़ी में मुखिया कौन है? हैं? दुनिया वाले जानते हैं, हैं? नहीं जानते। बीके वाले जानते हैं, हैं? नहीं जानते। ये विचारों की बुद्धि में नहीं बैठता है। ये भी समझते हैं कि महाभारी महाभारत लड़ाई है, और इस लड़ाई का जरूर कोई प्रेरक है। शिव बाबा प्रेरणा देते हैं, हैं? शिव बाबा तो प्रेरणा नहीं देते, तो कौन देता है? कोई तो है प्रेरक। उसका उनको पता नहीं है। उन्होंने नाम रख दिया है कृष्ण का, हैं? किसने? टी मार्ग वालों ने, बीके वालों ने नाम किसका रख दिया? कृष्ण का नाम रख दिया। गीता में भी नाम रख दिया कृष्ण का, भागवत में भी नाम रख दिया कृष्ण का, और महाभारत में भी नाम रख दिया कृष्ण का। तो बेचारे समझ भी नहीं सकते। अभी कृष्ण कृष्ण जब के आवे तो सतयुग में आवेगा, यहाँ आवेगा है, सतयुग में आवेगा, और यहाँ भगवान बैठा हुआ है। अब ये भी समझते हैं कि विनाश है, भगवान जरूर होगा। अरे होगा, पर किस रूप में? कोई रूप होगा या नहीं होगा? नाम सुना है कृष्ण का भक्ति मार्ग में। अभी यहाँ कृष्ण कहाँ से आवे? तो सतयुग में आएगा। अच्छा, ओम शांति।